السلام علیکم۔ آج منگل ہے، فروری کی 28 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے لیے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا حکم دیا ہے، اور فریقین کے وکلاء کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے اپنے موکلوں سے رائے لے کر آج ہی عدالت کو آگاہ کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے عدالت سے سماعت کل تک ملتوی کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں وزیراعظم آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کرنی ہے۔ چیف جسٹس نے فاروق ایچ نائک کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آج ہی مقدمہ نمٹانا چاہیے۔ عدالت کا سارا کام اس مقدمے کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ عدالت نے سماعت میں شام 4 بجے تک وقفہ کرتے ہوئے فریقین وکلاء کو سیاسی قیادت سے مشاورت کا وقت دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی 3 مقدمات میں ضمانت منظور کر لی گئی ہے، جبکہ توشہ خانہ کیس میں عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ سابق وزیراعظم کو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ ان پر اس کیس میں فرد جرم عائد ہو سکے۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے عمران خان کی عدم پیشی پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے 7 مارچ کو پیش کیا جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 7 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ قبل ازیں اسلام آباد کی مختلف عدالتوں میں عمران خان کے خلاف زیر سماعت دیگر 3 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں منظور ہو گئی ہیں۔ آئی ایم ایف کا وفد اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد 9 فروری کو پاکستان سے واپس روانہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد 21 روز گزر جانے کے باوجود حکومت پاکستان اور فنڈ کے درمیان اسٹاف لیول ایگریمنٹ کو حتمی شکل دینے میں فی الحال کوئی ٹھوس پیش رفت نظر نہیں آتی، جس سے پاکستان کو تقریباً 1.2 بلین ڈالر کی قسط ملنے اور پھر دیگر مالیاتی اداروں اور ممالک سے بھی رقوم ملنے کے دروازے کھل سکیں گے تاکہ معیشت کو مشکل دوراہے سے نکالا جا سکے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس بار تاخیر حکومت کی جانب سے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک جانب مہنگائی بڑھنے کے باوجود پالیسی ریٹ یعنی شرح سود میں نمایاں اضافہ نہ کرنا ہے، اور دوسری طرف حکومت کو بیل آؤٹ پیکج کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے بجلی کے نرخوں میں بھی مزید اضافہ کرنا ہے۔ ایک جانب شرح سود کو بڑھانے کے لیے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آئندہ جمعرات کو طلب کر لیا گیا ہے، تو دوسری جانب توقع کی جا رہی ہے کہ ملک میں بجلی کی قیمتوں کا تعین کرنے والا ادارہ نیپرا فنڈ کو مطمئن کرنے کے لیے مارچ کے پہلے ہفتے میں تمام صارفین کے لیے نیا ٹیرف شیڈیول جاری کر دے گا، جس سے بجلی مزید مہنگی ہو جائے گی۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں اتوار کی شام دیر گئے قاری فتح کی ہلاکت اور داعش کے خلاف طالبان کی کارروائیوں کی مزید تفصیلات جاری کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ قاری فتح انٹیلیجنس چیف کے طور پر جانا جاتا تھا، داعش کا سابق وزیر جنگ تھا، اور صوبہ خراسان کے لیے داعش کے ان 2 سر فہرست آپریٹرز میں شامل تھا جو کابل کے ضلع 17 میں کارروائیوں کے دوران مارے گئے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ قاری فتح داعش خراسان کا مرکزی ماسٹر مائنڈ تھا، اور وہ کابل میں روس، پاکستان اور چینی سفارتی مشن سمیت متعدد حملوں کی منصوبہ بندی کا ذمہ دار تھا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے گروپ کے 2 دیگر ارکان کے ساتھ داعش خراسان کے جنوبی افغانستان میں ایک سینئر لیڈر ابو عثمان کے نام سے مشہور راجز احمد اہنگر کے قتل کی بھی تصدیق کی۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے ایک نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں داعش کے 3,000 جنگجو کام کر رہے ہیں، और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। अमरीकी महकमे खारजा ने पीर को दहशतगर्दी से मुतालिक सन 2021 की मुल्की रिपोर्ट्स जारी की, जिसमें बताया गया कि दाइश और दीगर इलाकाई तौर पर मरकूज दहशतगर्द ग्रोहों ने अफगानिस्तान में फाल मौजूदगी बरकरार रखी है और दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। अक्वाई मुतहदा के इंसानी उमूर के राबता दफ्तर OCHA ने पीर को कहा कि अफगानिस्तान दुनिया भर में धमाका खेज गोला बारूद की आलूदगी की बुलंदतरीन सतहों में से एक है। ओचा के मुताबिक कई दहाइयों की जंग के बाद मुल्क को धमाका खेज गोला बारूद और बारूदी सुरंगें हटाने के हवाले से संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। ओचा ने एक ट्वीट में कहा कि सन 2023 में किए गए सर्वे के मुताबिक धमाका खेज मवाद को ठिकाने लगाने, बारूदी सुरंगों की सफाई, खतरे से आगाह करने और जिंदा बच जाने वालों की मदद के लिए 50 लाख जरूरतमंदों में से 14 लाख की मदद के लिए तकरीबन 1,80,00,000 डॉलर की जरूरत है। कबलजी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने अफगानिस्तान की जंग में न फटने वाले मवाद और बारूदी सुरंगों की वजह से हलाकतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। भारत की रियासत छत्तीसगढ़ के दारुलहुकूमत रायपुर में भारत की असल अपोजिशन जमात कांग्रेस पार्टी के 85वें मुकम्मल इजलास में सीनियर रहनुमा शशि थरूर की तकरीर मीडिया में मौजू बहस बनी हुई है। उन्होंने अपनी तकरीर में अकलियतों के मसाइल पर खामोशी इख्तियार करने पर अपनी ही पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि पार्टी को अपने सेकुलरिज्म के बुनियादी नज़रिए, तकसीरियत और मुल्क के मजहबी सकाफती तनवो के तहफ़ के मामले में खुलकर सामने आना चाहिए। इस डर से कि अक्सरियत के जज्बात को ठेक पहुँचेगी और वह हमसे अलग हो जाएंगे, बाज़ मामलात में कोई मौक़िफ इख्तियार न करना या उनको हल्का करके पेश करना दरअसल BJP के हाथों में खेलना है। तजियाकारों के मुताबिक कांग्रेस ने सेकुलरिज्म के अपने बुनियादी नज़रिए को खैर बात कहकर BJP का मुकाबला करने के लिए नर्म हिंदुत्व की पॉलिसी इख्तियार कर ली है। कांग्रेस की जानिब से नर्म हिंदुत्व के इल्ज़ाम की पहले भी तरदीद की जाती रही है और एक बार फिर तरदीद की गई है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की पुलिस ने दावा किया है कि इतवार के रोज़ जुनूबी ज़िले पुलवामा में अकलियती कश्मीरी पंडित फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शहरी संजय कुमार को कत्ल करने के वाक़े में मुलव्वस अस्करियत पसंद को गांव पदगामपुरा में मंगल को ही एक झड़प के दौरान हलाक किया गया। एक आला पुलिस ओहदेदार विजय कुमार ने बताया कि कई घंटे तक जारी रहने वाली इस झड़प के दौरान मुबैना कातिल आकिब मुश्ताक बट का एक साथी एजाज अहमद भी हलाक हो गया, जबकि एक भारतीय फौजी मारा गया और एक जख्मी हुआ। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली के जेर इंतजाम कश्मीर में टारगेट किलिंग के न रुकने वाले वाकयात का संजीदगी से नोटिस लेते हुए वजारत दाखिला के आला अफसरान पर मुश्तमिल एक टीम को सूरत हाल का जायजा लेने और दीगर अहम उमूर पर मकामी अहदेदारों के साथ बातचीत करने के लिए श्रीनगर रवाना किया है। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर के सरबराह इंतजामिया मनोज सिन्हा ने एतराफ़ किया कि इस तरह के वाकयात से लोगों में अदम तहफ्फुज़ का एहसास पैदा होता है। ताहम उन्होंने एक बार फिर यकीन दिलाया कि सिक्योरिटी फोर्सेज इन वाकयात में मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचा कर रहेंगी और आइंदा ऐसे वाकयात पेश न आए इसके लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। यूक्रेन के एक फौजी अहलकार ने मंगल के रोज बाखमूत शहर के इर्द गिर्द की सूरत हाल को इंतहाई कशीदा करार दिया है, जिसमें एक ऐसे इलाके की निशानदेही की गई है जो यूक्रेन के डोनेट्स सूबे में यूक्रेन और रूसी अफवाज के दरमियान शदीद लड़ाई का मरकज है। यूक्रेन की जमीनी अफवाज के कमांडर ओलेक्सेंडर सेरेस्की ने सोशल मीडिया पर कहा कि अहम नुकसान उठाने के बावजूद दुश्मन ने अपने बेहतरीन तरबियत याफ्ता वैगनर हमलावर यूनिटों को रवाना किया है ताकि हमारे फौजियों के दिफा को तोड़ सकें और शहर को घेरे में ले सकें। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने इतला दी है कि रूसी अफवाज ने शिमाल और जनूब से कुछ पेशरफ्त की है क्योंकि वो शहर को घेरे में लेकर उसके अंदर से यूक्रेनी अफवाज को पसपा करना चाहते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीर के रोज़ अपने रात के खिताब में कहा कि बाखमूत में सूरतेहाल ज्यादा से ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। उन्होंने कहा कि रूसी अफवाज हर उस चीज को मुसलसल तबाह कर रही हैं जो हमारी पोजीशनों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। इसी दौरान नेटो के सेक्रेटरी जनरल यॉन्स स्टॉल्टनबर्ग मंगल को फिनलैंड का दौरा करने वाले हैं। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब फिनलैंड और स्वीडन तुर्की के साथ नेटो में शमूलियत के बारे में अगले हफ्ते दोबारा बातचीत शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तुर्क वजीर खारजा मौलूद शावजोगलू ने पीर को कहा कि यह मुलाकात 9 मार्च को मुकर्रर की गई है। तुर्की ने स्टॉकहोम में तुर्क सिफारतखाने के बाहर इंतहाई दाएं बाजू के मुजाहरीन की तरफ से कुरान को नजर आतिश करने के रद्द अमल में जनवरी में होने वाले मुजाकरात रोक दिए थे। स्वीडन और फिनलैंड ने गुज़श्ता साल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नेटो में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी थी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल यॉन्स स्टॉल्टनबर्ग ने फरवरी के शुरू में तुर्की के दौरे के दौरान कहा था कि वक्त आ गया है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों को नेटो के अराकीन के तौर पर तस्लीम किया जाए। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने काजिकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए हिमायत का वादा किया है। उन्होंने बतौर आला अमरीकी सिफारतकार वस्ती एशिया के अपने पहले दौरे में आस्ताना में काजिक वजीर खारजा मुख्तार तलबीरदी से मंगल के रोज मुलाकात के दौरान इस अज़्म का इजहार किया। ब्लिंकन के दौरे में मंगल को C5+1 ग्रुप के साथ एक मीटिंग शामिल है। ये सिफारती बातचीत सन 2015 में शुरू की गई थी जिसका मकसद काजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ इलाकाई तआवुन को फ़रोग देना था। ब्लिंकन ने काजिक सदर कासिम जोमार्ट तोकायेव के साथ भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो खित्ते के ममालिक को एक दूसरे के करीब लाने, वसी तर रवाबित पैदा करने और अमली चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए ग्रुप के वज़राए खारजा के साथ पहले से ज़्यादा अमली काम करने के मुंतज़िर हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू एक सीनियर पॉलिसी एहलकार हैं और ब्लिंकन के दौरे में उनके साथ हैं। उनका कहना था कि यूक्रेन में रूस की जंग ने इन ममालिक पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला है। लू ने गुज़श्ता हफ्ते एक ब्रीफिंग में सहाफ़ियों को बताया कि हम खुराक और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों, बेरोजगारी, सामान की बरामद में दुश्वारी, कोविड के बाद की सुस्त बहाली और रूस से तारिकी ने वतन की बड़ी आमद का सिलसिला देख रहे हैं, इसलिए हम खित्ते में लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने साल वस्ती एशिया के लिए 41.5 मिलियन डॉलर की इमदाद का वादा किया है ताकि गजाई तहफ़ और मीशतों को मदद मिले जो हम देख रहे हैं कि मुश्किल का शिकार हैं। मुशतबा फलस्तीनी हमलावर ने मगरबी किनारे में एक इसराइली शहरी को फायरिंग करके हलाक कर दिया। मंगल को फायरिंग का यह वाकया ऐसे वक्त में पेश आया जब कई रोज से इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान पुरतशद्दुद वाकयात जारी हैं। इसराइली फौज के मुताबिक मगरबी किनारे में फलस्तीनी हमलावर ने कार सवार इसराइल को निशाना बनाया। इसराइल ने गुज़श्ता हफ्ते गजा की पट्टी पर बमबारी की थी। उससे कबल फलस्तीनी इलाकों से भी इसराइल की जानिब रॉकेट दारे गए थे। ईरान में मुख्तलिफ वाकयात में स्कूल के सैकड़ों तालिबात को जहर देने की खबरों के बाद हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। ईरान के वजीर सेहत डॉक्टर यूनुस पनाही ने तस्दीक की थी कि 600 से ज्यादा तालिबात को दानिस्ता तौर पर जहर दिया गया। उनके बकौल कुछ अनासिर चाहते हैं कि तालिबात को स्कूल से दूर रखा जाए। डॉक्टर पनाही का कहना था कि जहर के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल आवामी तौर पर दस्तियाब है जो जानलेवा नहीं। तालिबात को जहर देने के ज्यादातर वाकयात मजहबी एतबार से अहम समझे जाने वाले शहर कुम में पेश आए हैं, ताहम इसका सिलसिला नवंबर सन 2022 से जारी है। कनाडा और अमरीका ने हुकूमती आलात पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पीर को पाबंदी लगा दी है। व्हाइट हाउस ने विफाकी एजेंसियों को मकबूल सोशल मीडिया ऐप के इस्तेमाल को रोकने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है ताकि वो दिसंबर में कांग्रेस की तरफ से मंजूर करदा पाबंदी पर अमल दरामद कर सकें। अमरीका की इस पाबंदी में कानून नाफिज करने वाले इदारों, कौमी सलामती और तहकीकी मकासद के लिए ऐप के इस्तेमाल का महदूद इस्तिस्ना दिया गया है। टिकटॉक چینی کمپنی بائٹ ڈانس کی ملکیت ہے اور مغربی حکومتوں کی جانب سے ان خدشات پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ ایپ کے استعمال سے صارف کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے اور چین کے حامی خیالات کو فروغ دیا جاتا ہے۔ کمپنی نے ان خدشات کو مسترد کرتے ہوئے پابندی کو ایک سیاسی چال قرار دیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے منگل کو ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ قومی سلامتی کے تصور کو بڑھاوا دے رہا ہے اور دوسرے ممالک کی کمپنیوں کو دبانے کے لیے ریاستی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلٹن آپ کے لیے پیسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔